आप सभी बाबा के अनन्य बच्चों का इस बेहद शांतिवन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कमलेश बहन जी जो बॉम्बे से हैं, संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगी। आप अपने बाल्यकाल से हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं 48 इयर्स से। बहुत ही बाबा की ये खूबी रही है, बचपन से ही बाबा के ज्ञान में चलने वाले बच्चे जब बाबा के पास आते हैं और आगे चलते इस जीवन को अन्य आत्माओं के लिए समर्पित करते हैं, तो उनमें से एक आदि रत्न आप हैं। सेवाओं में सदा खुद आगे बढ़ना और औरों को भी इतने उमंग उत्साह से आगे बढ़ाना, ये आपकी विशेषता रही है। आप सांता क्रूज सेंटर ईस्ट के संचालिका है। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। अपनी जो खास कई विंग्स चलती हैं उसमें से शिपिंग, एरिएशन, टूरिज्म, इनके आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और साथ में युवा प्रभाग की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं। आप सेवा अर्थ देश और विदेश में जाते अपनी बहुमूल्य प्रतिमाएं अनेक आत्माओं तक पहुंचाकर अनेक आत्माओं का भी जीवन बाबा के साथ जोड़ने वाली आप जागती ज्योत हैं। युवा प्रभाग के अंदर भी आपका विशेष कर्तव्य रहता कि जहां भी यूथ के प्रोग्राम्स रहते हैं, यात्राएं रहती हैं, वहां पर आप अपने स्वयं निर्देशन के द्वारा अनेक आत्माओं को बाबा तक पहुंचाने का, संदेश देने का कार्य करती हैं। तो ऐसी विशेष हस्ती से आज हम सुनेंगे, सदा हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, सदा खुशनुमा जीवन हमारी कैसे बनी रहे, इस पर आज हम सुनेंगे। कमलेश दीदी जी।
ओम शांति। यूं तो देखा जाए बाबा के बच्चे बने और हमें बाबा के बनने से जो परिचय मिला, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये जीवन परिचय मिलने से ही हमारे जीवन में खुशी आ गई। ठीक है ना ये बात। और ये बेहद का बाबा का विशाल स्थान शांतिवन में हम सभी यहां पधारे हैं, तो मैं सोच रही थी कि जब सदा प्रसन्न चित्त की हम बात करते हैं तो वास्तव में चित्त प्रसन्न कब होगा या वो अवस्था कैसी है। अगर हम साइलेंस में टिक जाएं, वो शांति में चले जाएं, तो हमारा चित्त प्रसन्न ही रहेगा, जिसको भक्ति में या जिनको हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए सच्चा परमानंद। तो जब हमारा चित्त उस प्यारे प्रभु की, परमात्मा की याद में, जो आनंद का सागर है, उसमें बिल्कुल स्थिर हो जाता है, वो मन की जो शांतमय अवस्था है उससे जो खुशी मिलती है, वो जो प्रसन्नता है, वास्तव में उसी प्रसन्नता को पाने का हम सबका लक्ष्य है। क्योंकि एक होती है खुशी, जैसे छोटी छोटी बातें मान लीजिए छोटी छोटी बातें, कुछ मेरी बातें पूरी हो गई, कुछ उपलब्धियां हो गई। दुनिया में जैसे होता है, स्टूडेंट है, अच्छे मार्क्स आ गए, रिजल्ट अच्छा आया, अच्छी जॉब मिल गई, बच्चे अच्छे हैं, कमाई अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, ये छोटी छोटी बातें जो दुनियावी बातें हैं। तो जब ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में या जब ब्राह्मण जीवन में जब हमें छोटी छोटी उपलब्धियां होती हैं तो उनसे हमें खुशी मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने सेवा की, सेवा करके आपको खुशी मिली, किसी ने आपको कह दिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवा करके आए, खुश होके आपकी बहन ने आपको टोली खिला दी, लाइक ये मुझे जो खुशी प्राप्त होती है, और वो खुशी कब तक सीमित रहती है? जब तक वो मुझे मिलता रहता है। जैसे दुनिया में लोगों को छोटी छोटी उपलब्धियां होती हैं, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं शब्द प्लेजर, जो हमारे फिजिकल सेंसेस हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनकी जैसे किसी को छूने से हमें खुशी मिलती है, कोई चीज देखकर खुशी मिलती है, कुछ चीज सुनकर खुशी होती है। तो ये जो खुशी है, जिसके दूसरे शब्दों में हम कहें कि नाम की थोड़ी सी इच्छा, मान की थोड़ी सी इच्छा, थोड़ी रिकग्निशन की, थोड़ी मेरी पहचान बने उसकी इच्छा, वो मुझे प्राप्त हो गया तो मुझे खुशी मिलती है। बहुत ये स्वाभाविक है। और दूसरी खुशी कौन सी होती है, इससे बात की एक और खुशी है, हमारे मन में कुछ अपेक्षाएं होती हैं, और या हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा लाइफ जो है, जीवन है, बहुत स्मूथली चल रहा है, हम मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन जीवन स्मूथली चल रहा है, कोई बहुत हार्डशिप नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो भी मुझे खुशी मिलती है, वो भी एक प्रकार की खुशी है जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस। और तीसरी एक और खुशी है, वो खुशी कौन सी है, क्योंकि जो दूसरी स्टेज है उसमें क्या है कि परिस्थितियां या मेरे आसपास मेरा संबंध, संपर्क, वो सब क्या है, ठीक है, चल रहा है, और उसमें कोई इतने उतार चढ़ाव नहीं है। लेकिन तीसरे प्रकार की जो खुशी जिसकी मैं बात करने जा रही हूं कि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, परिस्थितियां फेवरेबल नहीं हैं, या जो भी मेरे आसपास है वो मेरे इच्छा के अनुकूल नहीं है, चाहे वो मेरे लौकिक परिवार में, चाहे मेरे अलौकिक क्षेत्र में, वो सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मान लीजिए मेहनत भी करते हैं हम, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ, मेहनत के बजाय पुरुषार्थ शब्द कहूं तो बेहतर होगा, हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी जो रिजल्ट पाना चाहते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, वो सफलता नहीं मिलती है, और तब भी मेरा जीवन, तब भी मेरा चित्त प्रसन्न रहे, आज हम इस बात पर शेयरिंग करेंगे। और वास्तव में यही प्रसन्न चित्त किसको कहेंगे, चित्त मेरा प्रसन्न हो, क्योंकि अगर आप देखें जो फर्स्ट टाइप ऑफ खुशी है उसमें तो दुनिया वाले लोग भी थोड़ा सा मिला खुश हो गए, ठीक है, पार्टी में गए, एंजॉय किया, खुश हो गए, फिर आगे फिर वैसे के वैसे। और सेकंड टाइप ऑफ जो हैप्पीनेस है वो भी क्या है कि ठीक है हम चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो हम भी खुश हैं, लेकिन जरा सा भी अगर उस अच्छे अच्छे चलते में कुछ उल्टा हो जाता है, कुछ रिवर्स गियर लग जाता है जीवन रूपी गाड़ी को, तो क्या होता है, हमारा वो चित्त जो प्रसन्न रहे, अंदर में जो खुशी बनी रहे, वो खुशी नहीं रहती। तो वो खुशी क्यों नहीं रहती है, तो आज हम इसी बात पर थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जब से हम बाबा के बने तो बाबा ने तो हमें खुशियों का खजाना दिया है। देखिए खुशी को क्या कहते हैं, खुशी को खुराक भी कहते हैं, खुशी को अनमोल निधि अथवा खजाना भी कहा गया है। और खुशी के लिए बाबा ने ये भी कहा है, खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है, कहा है ना बाबा ने। और खजाने में जब हम कहते हैं, बाबा कहते हैं दुनिया जिस खजाने को ढूंढ रही है, आज लोग उसके लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, कहां कहां जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए कितने कितने पैसे खर्च कर देते हैं। विदेश में जाते हैं लाखों रुपया खर्च हो जाता है, क्लब्स आदि में जाते हैं तो हजारों रुपया खर्च हो जाता है, और जैसा व्यक्ति होगा उसके उतने पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो मनोरंजन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। लेकिन हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको दुनिया में सबसे बड़ा खजाना प्राप्त हुआ, और वो खजाना प्राप्त हुआ खुशी। और वो क्यों मिली, क्योंकि वो खुशी इसलिए मिल गई कि आंख खुलते ही हमारी मुलाकात किससे होती है, किससे मुलाकात होती है, हाँ किससे मुलाकात होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी। किसी व्यक्ति को, किसी साधारण व्यक्ति को यदि किसी बड़े के साथ जो हाईली पोजिशन है, जिसकी दुनिया में एक ऊंचा हौदा है, ऊंची उसकी पोजिशन है, ऊंचा पद है, उसके साथ दो तीन दिन रहने का मौका मिल जाए तो आप सोचिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और वो दो तीन दिन का जो उसका अनुभव होता है उस व्यक्ति के साथ रहने का, वो लोगों को बार बार सुनाता है। और आप सोचिए हम तो वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो आंख खुलते ही उसके साथ हमारी पहली पहली अपॉइंटमेंट उसके साथ होती है। भक्त भी बाद में मिलते हैं, हम उनसे पहले मिलते हैं, और न केवल सुबह अमृत वेले मिलते हैं लेकिन सारा दिन वो हमारे साथ रहता है। तो ऐसा भाग्य दुनिया में तो किसी को प्राप्त नहीं है। तो इतना बड़ा हमें खजाना मिला, लेकिन वो खजाना प्राप्त होने के बावजूद भी जो मेरा मन जो प्रसन्न रहना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं जो प्रसन्न चित्त है वो प्रश्न चित्त नहीं है। अगर प्रश्न है, प्रश्न चित्त है, क्वेश्चंस हैं अगर, तो वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। तो आप सोचिए ये सब होने के बावजूद भी अगर हम अपनी प्राप्तियों की, अपनी उपलब्धियों की जो हमें बाबा का बनने के बाद हुई, उनका अगर हम मन में वर्णन करें तो कितनी ऐसी बातें हैं, बाबा ने मुझे कहां बिठाया है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हमारा जो चित है वो प्रसन्न नहीं रहता। और बाबा ने लेटेस्ट मूल्यों में भी, और समय प्रति समय बाबा ये बार बार कहते रहते हैं कि बच्चों के मुख से हमेशा वाह वाह के शब्द निकलने चाहिए। और कुछ दो तीन हफ्ते पहले की या लास्ट वीक की ही मुरली है जिसमें बाबा ने कहा था बच्चों के मुख से हाय की बजाय आहा बाबा, ये शब्द निकलना चाहिए, आहा, वो खुशी का शब्द निकलना चाहिए, लेकिन वो निकलता नहीं है। कारण क्या होता है? और अगर हम कोई भी बात के कारण को जान जाते हैं तो उसका हम निवारण निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं बाबा हमको उस समय मिला जबकि संसार के अंदर समस्याएं और परिस्थितियां वो डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, जटिल होती जा रही हैं। कोई परिस्थितियां इतनी आसान दिखती नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम्हें हमेशा खुश रहना है। तो हमेशा खुश रहने के लिए हम क्या करें, उसका क्या तरीका है? तो जब थोड़ा इस पर विचार चल रहा था तो बाबा का बनने के बाद क्या ऐसा होता है जो हम हर परिस्थिति में अपने कर्म करते हुए लौकिक या अलौकिक सेवाएं करते हुए जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, संस्कारों के जो टकराव आते हैं, स्वभाव के जो टकराव आते हैं, वो सब होते हुए भी, ज्ञान बुद्धि में होते हुए भी हम क्यों नहीं वो कर, अपने आप को क्यों हम उस बहाव में बहा लेते हैं, हम क्यों अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते, क्यों हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता, उसका कारण क्या है? तो एक बात हम देख रहे थे कि जाने अनजाने हमारी एक आदत बन गई है, और वो आदत क्या है, क्योंकि हम सभी उन्नति के पथ पर हैं, हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कहलाते हम सभी वीके हैं। कोई 20 साल से ज्ञान में है, कोई 30 साल से है, कोई 2 साल से है, सब कोई 1 साल वाला भी होगा, कोई कुछ मास वाला भी होगा, हम सभी बाबा के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब जब हम एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि जब बाबा के बन गए और बाबा का बनने के बाद हम क्या कहलाए अपने आप को, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने से क्या होता है, जब हम एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ कमी कमजोरी देखते हैं तो जाने अनजाने हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को छोड़कर दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। और वो दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कैसे करते हैं, ये तो बहुत पुराना है ना, इसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाबा ने तो ऐसा कहा है ना, इसको तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, इसको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, ये होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है नहीं होता है, होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम ऐसे दूसरों के ऊपर या तो हमारे मन में वो बातें चल रही होती हैं या हमारी कॉन्वर्सेशन में, जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा साथी है, जिसके साथ मेरा दिल मिलता है, जिसके साथ हमारा लेवल मैच होता है, उनके साथ जब हम शेयरिंग करते हैं तो हमारे वार्तालाप के अंदर कौन सी बातें होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं। हम बजाय अपने बारे में सोचने के हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब आप सोचिए, हमने क्या किया, अपनी लाइफ को बनाने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर किया, दूसरे के लाइफ में हम जब चले गए तो मैं अपनी लाइफ को मिस आउट करती हूँ। मुझे पुरुषार्थ अपने लिए करना चाहिए था, समय अपने लिए देना चाहिए था, लेकिन समय मैं दूसरे के लिए बात सोच के गंवा रही हूँ। और इसी कारण क्या होता है, जब ऐसी बातें कॉन्टिन्यूसली हमारी लाइफ में आती रहती होती रहती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी खुशी को गायब कर देती हैं। और इसमें क्या होता है, इनिशियली बिगनिंग में तो हम क्या करेंगे, कोई छोटी छोटी बात करेंगे, धीरे धीरे अब हम उनके अंदर जो है कोई ना कोई कमी कमजोरी वो दिखने लगती है, और वो कमी कमजोरी धीरे धीरे हमारे मन के अंदर आती जाती है, अब वो एक आदत सी पड़ी हुई है और उस आदत पर हम ध्यान नहीं दे रहे, और आदत पर न ध्यान देने से हमारे मन को एक आदत पड़ जाती है वेस्ट को कलेक्ट करने की। जैसे बाबा ने आज क्या कहा था, बाबा ने कि एक स्वभाव बन गया है, अब हम चर्चा बाहर के लोगों की नहीं करते, जो लौकिक में हमारे मित्र संबंधी हैं उनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, शायद कहीं कहीं ये भी होती होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्ञान में चलते चलते पुराने होते हैं, अब हमारे लिए बहुत बड़ा ये देवी परिवार बन गया, और देवी परिवार में सब नंबरवार हैं, बाबा ने ये तो कहा नहीं कि सब नंबर वन है, लेकिन सारे नंबर वार है। अब सब नंबर वार है, नंबर वार पुरुषार्थ भी उनका नंबर वार है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है तो वो भी नंबर वार है। देवताएं बनेंगे तो वो भी नंबर वार बनेंगे। बाबा ने मुरली में क्या कहा कि दासियां भी कई प्रकार की होती है, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई सफाई करने वाली। सफाई करने वाली तो महल में आ भी नहीं सकती, लेकिन है तो वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है तो सब इस बेहद परिवार के। तो इस बेहद परिवार में अच्छा कईयों की क्या होती है, कुछ कमियां कमजोरियां बहुत जल्दी दिखाई देती हैं, कुछ एकदम बाह्य रूप से होती हैं, और कईयों की कमियां कमजोरियां थोड़ी सी जल्दी से बाहर प्रत्यक्ष नहीं होती। क्योंकि अब जिनकी बाहर प्रत्यक्ष होती हैं, जल्दी से दिखाई देती हैं, उनको हम पकड़ लेते हैं, और कई होते हैं वो जल्दी से अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। तो इसीलिए ये सब वैरायटी होने के कारण और इतना बड़ा बेहद परिवार होने के कारण ये बहुत सारी बातें जो हमें उतार चढ़ाव की दिखाई देती हैं, वो हम अपने मन में कलेक्ट करते रहते हैं, और हमारे मन में बहुत सारा रिफ्यूज, जिसको आज बाबा ने मुरली में कहा है, यानी बहुत सारा वेस्ट जो है वो अनोइंगली कलेक्ट होता रहता है। क्योंकि ये मन को आदत पड़ गई है कि नजर जाएगी तो सबसे पहले, जैसे कईयों की आदत होती है, उनकी सबसे पहले नजर किसी की कोई कमी कमजोरी पर जाती है, और कईयों की आदत होती है कि उसकी नजर सबसे पहले किसी की अच्छाई पर जाती है। लेकिन इस कलयुग की दुनिया में जब ये संसार का, ये सृष्टि चक्र का जब अंतिम चरण है, इस अंतिम चरण में हमारी नजर सबसे पहले कहाँ जाती है? हमारी नजर सबसे पहले दूसरों की कमी कमजोरियों पर जाती है, बजाय की अच्छाइयों पर। उसके कारण हमारे मन के ऊपर बहुत सारा बोझा जो है वो इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। तो इसीलिए आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है माइंड क्लीनिंग, मेंटल क्लीनिंग। हम रोज अपने मन को क्लीन करें। जैसे भक्ति में भी, आज भी बाबा की मुरली में था, कुछ भक्त होते हैं वो भक्ति में बड़े मस्त रहते हैं, और तुम बच्चों को ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। तुम क्लीनिंग कैसे करेंगे? कोई भी साधन आप ले लीजिए। देखिए आजकल हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, अगर कंप्यूटर की इंटरनल क्लीनिंग नहीं करेंगे तो कंप्यूटर भी क्या होता है, वो हैंग हो जाता है, मालूम है ना आपको, वो रुक जाता है, काम करते करते रुक जाता है। कोई भी मशीन आप देखिए, अगर उसकी आप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो काम करते करते एक दिन ऐसा आएगा वो रुक जाएगी। मान लीजिए आप फाइलिंग का काम करते हैं, या आपके पास पर्चियां आके इकट्ठी होती है, आप एक डिब्बे के अंदर डालते रहते हैं, अगर आप 10-15 दिन के बाद उस डिब्बे को क्लीन न करें तो वो क्या होगा, वो इतना भर जाएगा कि जाके इतना उसके अंदर जो भरा था आपने कागज कहीं यहाँ वहाँ फंस जाएंगे, और उस ड्रॉर को आप खोलने की कोशिश करो तो वो प्रॉपर खुलता भी नहीं है, बंद भी नहीं होता है। उसकी भी क्लीनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे माताएं क्या करती हैं, घर में रोज हम सफाई करते हैं ना, और भक्ति में ये कहा जाता था कि हे मानव, तुम कभी तो अपने मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर। तो इसी प्रकार अगर मुझे अपने चित्त को प्रसन्न करना है तो मुझे सबसे पहले अपने अंदर यहाँ झांकना होगा कि कहीं किसी कोने में इधर उधर कुछ पुरानी चीजें, पुरानी बातें, या कुछ और धूल मिट्टी कहीं कुछ जमा तो नहीं हो गई है, कुछ ये व्यर्थ का, जो बहुत सी व्यर्थ बातें हैं, नकारात्मक बातें हैं, जो वेस्ट बातें हैं, जिनको बाबा कहते हैं आसुरी बातें हैं, वो कहीं मेरे मन के अंदर घर तो नहीं बना रही है। अगर वो घर बना रही है तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे, वो मेंटल क्लीनिंग नहीं होगी, तब तक मेरा चित्त जो है वो प्रसन्न रहे, विपरीत परिस्थितियों में वो नहीं हो सकता। और उसका एक ही तरीका है, वो तरीका, पहला तरीका है, ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करो, ज्ञान की मस्ती में मस्त रहो। जो हमें बाबा ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में लाओ, क्योंकि जब वो बात सामने आती है, कई बार हम क्या करते हैं, हमारा एक बाबा ने हमें सब चीजों का एक उपाय बताया है, मन मना भव, मन को बाबा में टिका दो। लेकिन जो बात मन में चल रही है, वो बात जो मेरे साथ बात हुई, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी ने आपको, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप 5 साल से ज्ञान में चलते हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, चलते चलते आपको किसी ने कोई करेक्शन दी कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे करो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अब ज्ञान ये कहता है कि उसने ये बात कही, लेकिन आपको ये लगता है मेरे अंदर ये बात नहीं है, और जब आपको लगता है कि मेरे अंदर ये बात नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फौरन उस बात को, उसने जो कही उससे सहमत नहीं होंगे, आप रिजिस्ट करेंगे उस बात को, उसको या तो प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस समझते हैं, उसको रेजिस्ट करेंगे कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है ये बात। और अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं ये बात ऐसे नहीं, आपने ये बात है कभी देख कोशिश करना, लेकिन मन रेजिस्ट कर रहा है, बाहर से आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन जो कह रहा है कि नहीं ये बात ऐसी नहीं है, तो रेजिस्ट करने से क्या होता है, एक छोटा सा मिसाल है, रेजिस्ट करने से क्या होता है, इंटरनल लेवल पर जो हमारा आंतरिक स्तर है, उस आंतरिक स्तर में हमारे में या तो तनाव पैदा होता है, या असुरक्षा की भावनाएं पैदा होती हैं, या हमारे अंदर भय की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और एक्सटर्नल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, बाहरी जो स्तर है उस स्तर पर क्या होगा, संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा। तो जब इस तरह की भावनाएं मन में आने लगेंगी कि ये बात तो ऐसी नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारे रिलेशंस अच्छे थे, थोड़ी सी उसके अंदर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी उसके अंदर एक बारीक से धागे जितनी या बाल जितनी एक दरार उसके अंदर आ गई, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने रिजिस्ट किया उसको। और जब ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी आगे आने वाली कई परिस्थितियां और बातें हमारे सामने आएंगी, वो बातें धीरे धीरे और कड़ी हो जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहली बात ये है, एक तो रिजिस्ट करना बंद करना चाहिए, हम जो हैं जैसे हैं, हमारे में कुछ कमियां हैं, हमारे में कुछ अच्छाइयां हैं, उनको स्वीकार करो। अगर कोई कहता है, किसी ने कह दिया कि आपके अंदर ये चीज है, उसको तुरंत ये कहने की बजाय नहीं ये बात ऐसे नहीं है, आप अपने अपने मन में झांको। हमें याद आती है एक बात दीदी मनमोहिनी जी की, उन्होंने एक बार ये कहा था, किसी ने अगर आपको ये कहा कि ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, आप समझते हैं कि ये बात गलत है, तो आप समझ लो कि शायद ये अगर आप में वो बात है तो उसको करेक्ट कर लो, और अगर नहीं है तो समझ लो ये फ्यूचर के लिए मुझे शिक्षा मिली है। तो अगर हम इस तरह से अपने पथ को आसान बनाएंगे तो हमारे लिए प्रसन्न रहना भी आसान हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, जब ऐसी ऐसी बातें आएंगी तो जीवन के अंदर असंतुष्टता आती रहेगी, और जहां असंतुष्टता होती है वहां क्या होता है, वहां क्या होता है, वहां क्या होगा, वहां अप्रसन्नता है। तो हम जो हैं जैसे हैं, ये मेरी कमियां हैं, ये मेरी अच्छाइयां हैं। हमको याद है शुरू शुरू में, अभी तो इतना नहीं होता है, हमेशा कहा जाता था कि अपने गुण लिखो और अपने अवगुण लिखो। तो हम ब्राह्मण बच्चों को भी ये मालूम होना चाहिए कि ये मेरी कमियां हैं, ये यहां यहां मुझे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और यही मेरी विशेषताएं हैं जिनको सेवा में लगाने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हम ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे जीवन के अंदर, तो ये जो छोटी छोटी बातें हमारी खुशी को गायब कर देती हैं, हमारे चित्त को प्रसन्न रहने नहीं देती हैं, वो ठीक है मिले, ठीक है ओम शांति हमने कर लिया, खुश है बहुत है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, खुश हो गए चले गए, फिर मन में तो वही बात घूम रही है। होता ही नहीं होता ऐसा, कोई आपको पूछेगा कोई सामने मिला कैसे है, ठीक है बहुत खुश है, हंस भी लिए, लेकिन अंदर में जो मेरा चित्त प्रसन्न होना चाहिए वो नहीं है। कारण मैंने ज्ञान से अपने आप के अंदर परिवर्तन नहीं लाया है, और उस परिवर्तन को मैंने योग की शक्ति से उसको पक्की छाप नहीं लगाई है। ज्ञान की शक्ति परिवर्तन करने में मदद देगी और योग की शक्ति उसके ऊपर पक्का होने की स्टैंप लगाएगी, दोनों ही जरूरी है, तब हमारा चित्त जो है हमेशा प्रसन्न रहेगा। और ऐसे ही दूसरी बात कि कई बार सचमुच प्रवृत्ति में हम लोग रहते हैं, आप सब जैसे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे कुमार हैं, कुमारियां हैं, कोई जॉब करने वाली हैं, माताएं हैं, भाई हैं, कोई रिटायर भी होंगे, तो कभी कभी ऐसी बातें सामने आती हैं जो सचमुच ऐसे लगता है बड़ी परीक्षा है, बहुत समस्याएं मेरे सामने आ गई हैं। और उस समय बहन जी आप कहो कि हम खुश रहे, हम एकदम से प्रसन्न रहे, बाबा कहता तो है लेकिन होता तो नहीं है ना, समझते तो है होना चाहिए लेकिन होता तो नहीं है ना। ये तो बाबा ने तो कहा था, मन से क्या निकलता है, बाबा ने तो कहा था कि बच्चे ये तो सहज मार्ग है, आपने तो बहन जी हमें बताया था ये तो सहज राजयोग है, ये तो सहज राजयोग कहाँ है, ये तो बड़ा कठिन है, पहले बाबा के नहीं बने थे तब तो कोई ऐसी बातें नहीं थी, और बाबा के बने तो बड़ी समस्याएं आ गई, कभी कभी अपने ही परिवार वाले हमारे लिए समस्या का रूप धारण कर लेते हैं, कभी हमारे ही जिनको हमने कभी मदद की थी, सहयोगी थे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स थे या हमारे ऑफिस कलीग्स थे या हमारे नेबर्स थे, तो वो हमारे कभी सहयोगी थे, हमने सहयोग दिया लेकिन ज्ञान सुनने के बाद कभी वही हमारे विरोधी बन जाते हैं, तो वही समस्या हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अब बाबा ने तो कहा बच्चे सहज मार्ग है, और भगवान तो सत्य है, तो उसका एक एक वाक्य तो सत्वचन ही है ना। तो बाबा ने एक मुरली में ये कहा था कि बच्चे कि जब आप बाबा के बने तो बाबा का बनने से ही आपने लक्ष्य कौन सा लिया, लक्ष्य कौन सा लिया, लक्ष्य हमारा बड़ा ऊंचा लक्ष्य है, और ऊंचा लक्ष्य लेने के साथ ही आपने चैलेंजेस को, और आपने माया को कहो चैलेंज किया है, या आपने परीक्षाओं का समस्याओं का आवाहन किया। अब अपने द्वारा किए हुए आवाहन से आप खुद ही घबराते हो और अपनी खुशी को गायब कर देते हो, आवाहन किसने किया था, जब हमने ऊंचा लक्ष्य लिया तो हमने माया को चैलेंज किया, माया को चैलेंज किया मना हमने समस्याओं को परीक्षाओं का आवाहन किया, और जब उनका आवाहन किया अब मेरे ही आवाहन से मैंने जिसको बुलाया उससे ही मैं घबराती हूँ। उसमें बाबा ने बात सुनाई थी, बाबा ने कहा था ये पुरुषार्थ मार्ग राजयोग का मार्ग है ना, हम पुरुषार्थियां चल रहे हैं तो हमें रास्ता तय करना है। मान लीजिए यहाँ से आपको अहमदाबाद जाना है या आपको यहाँ से यूपी जाना है, इलाहाबाद जाना है, आपको रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना, चाहे आप कार से जाएं चाहे आप ट्रेन से जाएं। अब ट्रेन से या कार से आप जा रहे हैं तो जाते जाते रास्ते में नजारे भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आप नजारों को कह सकते हो कि नहीं आओ, कह सकते नजारों को नहीं आओ, वो तो आएंगे। इसी प्रकार अब जब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं तो मार्ग पर चलने चलते चलते ये नजारे तो आने ही हैं। तो सहज मार्ग को जो हम बाबा को कभी कभी अपनी रू रिहान में बाबा से बड़ी प्रेम भरी बातें करते हैं, तो हम बाबा को कभी कह देते हैं कि बाबा मुझे इतना सहन क्यों करना पड़ता है, ये सहज मार्ग है ये सहन मार्ग है, ये सहन करने का मार्ग है ये सहज मार्ग है। हमें लगता है कि तो बड़ा सहन करना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं सहन मार्ग ये आपने बनाया है, बाबा ने तो सहज ही रास्ता दिया है। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि परीक्षाएं और समस्याओं को हमने ही आवाहन किया था, और हम कैसे उसको कठिन बना देते हैं, क्योंकि हम उसको सुलझाने की बजाय, ज्ञान को अप्लाई करने की बजाय, ये सोचने की बजाय ये मेरे लिए परीक्षा है, ये मेरे आगे बढ़ाने का साधन है, मेरे द्वारा ही इनको बुलाया गया है, मैंने ही इनको निमंत्रण देकर बुलाया था, मैंने ही इनका आवाहन किया था, ये सोचने की बजाय, या मेरा ये आगे बढ़ने का साधन है ये सोचने की बजाय, हम ये सोचने लगते हैं कि ये क्यों मेरे पास हुआ, आया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्यजनक का चिन्ह होता है ना एक, वो लगा देते हैं। अच्छा ऐसा हो गया, हम कहते हैं ना चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तब बाबा कहते हैं अब समस्या आई, बाबा ने क्या कहा था कि कोई भी बात मेरे सामने आई तो हमें क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, हाय हाय करना चाहिए या वाहवा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वाहवा करना चाहिए ना, लेकिन करते क्या है, हाय ऐसा हो गया, अच्छा बाबा ऐसा भी होना था। तो हम थोड़ा सा अंदर से घबरा जाते हैं। जिसका चित्त प्रसन्न होगा हमेशा, उसके जीवन में उसके चित्त पर कभी प्रश्न, कभी भी आश्चर्यजनक का चिन्ह, या कभी भी घबराहट, कभी भी उलझन, इस प्रकार की बातें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि चित्त प्रसन्न है। तो इसीलिए, क्योंकि ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, एक खुशी वो है जो हमें थोड़ी बहुत, जैसे सेवा मैंने की मुझे खुशी मिल गई, ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है, बहन जी आपने सेवा का मौका दिया मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा फिर दो दिन के बाद दो चार दिन तक आपको सेवा नहीं मिली, बहन जी आपने सेवा ही नहीं दी, खुशी नहीं है, खुशी गायब होगी क्यों, बाबा ने मनसा सेवा तो दे रखी है ना, वो खुशी बहन जी दे और मैं करूं तो मुझे खुशी मिले, या मेरा जीवन हमेशा ही खुशमय होना चाहिए, समझा आपने, छोटी छोटी बातों से खुशी। और एक हम चलते जा रहे हैं, मुझे खुशी मिल गई है, लेकिन थोड़ा सा भी जीवन में कुछ बदल गया, कुछ चेंज हो गया, अचानक पेपर आ गया और मेरी खुशी गायब हो गई, चेहरा मेरा उदास हो गया, इसका मतलब चित्त मेरा प्रसन्न नहीं है। और समय अनुसार बाबा ने हम बच्चों को ये बता दिया है कि जैसे जैसे समय परिवर्तन की ओर भाग रहा है, बदल रहा है, समय में बदलाव आ रहे हैं, वैसे ही क्या होगा, परिस्थितियां भी जटिल होती जाएंगी, लेकिन वो कठिन किसको लगेंगे, जिसने उस ज्ञान को समझा नहीं होगा, जिसने ज्ञान को अपने जीवन में लाया नहीं होगा, जिसने ज्ञान का समय प्रति समय इस्तेमाल नहीं किया होगा। और ये शुरू कहाँ से होता है, ये शुरू हमेशा छोटी छोटी बातों से ही होता है, सिंपल सिंपल बातों से। कभी कभी हम क्या समझते हैं कि ठीक है ना, हम केयर नहीं करते, लेकिन यही छोटी बातें बड़ी बातें बनती हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर खुशी चाहते हैं तो सबसे पहले जो है, हम जो हैं जैसे हैं हम, और जहां हैं उससे हम संतुष्ट रहें, और जहां संतुष्टता होगी वहां खुशी होगी। मन में प्रश्न ना उठाएं, मुझे ज्ञान बाद में क्यों मिला, अगर मैं पहले ज्ञान में आ जाता तो अच्छा होता था, मेरा रोल ऐसा क्यों है, या मुझे सेवा का मौका क्यों नहीं मिलता, या मेरा भाग्य ऐसा क्यों। बाबा ने लास्ट आने वाले बच्चे के लिए भी पूरा चांस दिया है आगे जाने का। बाबा अभी जो कुछ सुना रहे हैं वो जिस्ट में सुना रहे हैं, सार में सुना रहे हैं, और विस्तार हमारे पास बहुत है। अगर उस विस्तार के ज्ञान के सार को भी जीवन में धारण कर लें तो भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। हर व्यक्ति कोई संसार के किसी भी कोने में है, कहीं भी है, वो देश में है, विदेश में है, बाबा से वो जितना प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकता है। कंडीशन केवल एक ही है, बाबा को जानना, पहचानना, बाबा द्वारा मिले हुए ज्ञान को समाना, उसको अपने जीवन में उतारना और योग के द्वारा उस ज्ञान पर पक्की छाप लगाना। इसीलिए ये कभी मत समझना, जैसे दुनिया में लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है ना, चलो दूसरे से फ्रेंडशिप कर लो तो खुशी होगी। ये आजकल का ट्रेंड है, 21st century का ट्रेंड चेंज, कि ये चीज अच्छी नहीं है। वैसे भी देखिए साधन ऐसे बन गए ना, आजकल साधन कैसे बन गए पता है ना आपको, कि बस जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में पहले होता था यूज एंड थ्रो, अभी भारत में भी ऐसे ही साधन आ गए हैं बहुत सारे, स्पेशली बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही है। बस ये टेलीफोन लिया, खराब हो गया, चलो भी अभी दूसरा ले लो, आजकल साधन ही ऐसे बन गए हैं सारे। इसी प्रकार रिलेशंस में भी हो गया है, संबंधों में भी ऐसा ही हो गया है। अच्छा ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है छोड़ो इसको, अभी दूसरे से दोस्ती कर लो। अच्छा ये चीज अच्छी नहीं है तो ये काम कर लो। लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो उसमें खुश रहना या ना रहना ये मेरे ऊपर है। और आप देखिए हमारी खुशी का यादगार चित्र कौन सा है, भक्ति में बना हुआ है। कृष्ण को और गोपियों को हमेशा डांसिंग पोज में दिखाते हैं, कृष्ण को और गोपियों को किस में दिखाते हैं, डांसिंग पोज में। अच्छा और कौन सा यादगार है, विपरीत परिस्थितियों में भी खुश, उसका यादगार कौन सा है। कृष्ण को किस पर दिखाते हैं, किस पे दिखाते हैं, सर्प पर दिखाते हैं, काले सर्प पर दिखाते हैं, किसका ये किसका यादगार है, ये भी तो हमारा यादगार है ना। इसलिए हमेशा याद रखना, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, नॉट टूडे और टूमोरो। खुश अगर रहना है ना, ये वर्तमान मोमेंट, ये जो मेरा ये समय है, ये समय खुश रहने का है, उसको पोस्टपोन नहीं करो। जो दुनिया में क्या कहते हैं कई लोग होते ना, कि हाँ बस मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगी, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। अच्छा जब मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी फिर मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, वो ऐसे अपनी खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, बस ये काम हो जाए ना तो बस खुश हो जाएंगे। लेकिन इंटरनली कुछ भी हम करते हैं उसमें हम खुश रहें, तो टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, ये मोमेंट मेरी खुशी लाने का है। जहां भी मैं हूं, मैं बस स्टैंड पे खड़ी हूं कड़क धूप में, मैं कहीं पर किसी रिमोट स्थान पर खड़ी हूं, कोई साधन नहीं है, अभी आधे घंटे के बाद वो बस आएगी या ट्रांसपोर्ट का साधन आएगा, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। आज काम ऐसा हुआ कि मुझे 6 घंटे भोजन खाने को नहीं मिला, सुबह से नहीं खाया, लेकर तो निकले थे लेकिन चांस ऐसा बिना नहीं मिला, लेकिन तो भी मैं खुश हूं। किसी ने मुझे उल्टा सुल्टा बोल दिया जबकि मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि ये बात ऐसी नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, मे बी आउट ऑफ जेलसी, मे बी ईर्ष्यावश, या मुझे गिराने के लिए, वो लौकिक अलौकिक कोई भी हो सकता है, वो मुझे इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। तो मोमेंट कौन सा है, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, आज और कल, टुडे और कल, जो आने वाला कल है उसकी राह मत देखो। और फिर द प्लेस ऑफ हैप्पी इज हियर नॉट समवेयर। हम सोचे कि हम फलानी जगह चले जाएंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, नहीं, हम जहां भी हैं हम वहां अपने लिए खुशी बटोर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हमारी खुशी किसी की ताकत नहीं हमारी खुशी को छीन सके, ये हमारे ऊपर है कि हम कितना खुश रह सकते हैं, कितना हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो हमेशा खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी बांटते जाओ, प्रसन्न रहो और दूसरों को भी प्रसन्न बनाते जाओ। ओम शांति।
बहुत बहुत आदरणीय कमलेश दीदी जी का हम शुक्रिया कहते हैं। सदा खुश रहने की विधि तो आप सभी को मिल ही गई, व्यर्थ से कैसे हमें अपने आप को बचाना है, और सदा बाबा की निरंतर याद में उसकी मिली हुई मुरली की धुन, ज्ञान के रत्नों को कैसे चिंतन में लाना है, उसका बहुत ही सुंदर आपने आज हम सभी को मार्गदर्शन दिया। आपने साकार बाबा की पालना भी ली है, इसलिए दीदी जी कुछ वो क्षण आपके अगर अनुभव के हैं तो थोड़ा शेयर करें, अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम खास दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं।
मुझे कहा गया है कि साकार बाबा के अनुभव की कोई बात सुनाऊं, ये तो शायद हो सकता है बहुतों ने जो जनवरी मास का ज्ञानव्रत का अंक निकला है उसमें लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको शेयर करती हूँ। हम बहुत छोटी थी जब साकार बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और सौभाग्य ऐसा है कि हमें अपने इस अलौकिक जीवन में भी पालना बहुत वरिष्ठ दादियों से और भाइयों से मिले, और जिसमें मुख्य रोल है भ्राता जगदीश भाई जी का। और यूं तो सभी जितने भी हमारे बड़े भाई हैं उनसे समीप रहने का या समीप आने का बहुत अवसर प्राप्त हुए हैं, और हमारी पहली टीचर ही वास्तव में गुलजार दादी हैं, क्योंकि जब हम कमला नगर सेंटर दिल्ली पर गए थे तब गुलजार दादी वहां क्लास कराया करती थी। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, और विशेष क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे तो चक्रधारी दीदी वो हम सबकी बच्चों की क्लास कराया करती थी। और उसी समय ही 1968 की ये बात है जब साकार बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत डिटेल तो नहीं सुनाऊंगी, मैं एक सिंपल छोटी सी बात बताती हूँ कि लगन कैसे थी हमारी। अदरवाइज अगर मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ, जबकि मैं बहुत छोटी थी लेकिन मेरे विचार पहले से ही बहुत स्वतंत्र विचारों की मैं व्यक्ति थी पहले, वो मुझे अब समझ में आता है क्योंकि बचपन में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे विचार बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग थी मेरी अपनी प्रकार की। अगर समझो किसी को कुछ कहा कि ये काम करना है, उसने मुझे नहीं करके दिया तो मैं कहती थी ठीक है मैं अपने आप कर लूंगी, लाइक दैट इस प्रकार का था। तो कैसे बाबा से मिलने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया, और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अपने लौकिक घर से चक्रधारी दीदी जो ग्रुप लेकर आई थी उनके साथ में अकेली आई थी, लौकिक घर से मैं अकेली थी, और मेरे जीवन में सबसे पहली बार ट्रेन में बैठना भी वो पहली बार ही था। उससे पहले हमने ट्रेन कभी बैठने का मौका नहीं मिला, कभी देखी भी नहीं थी ट्रेन, छोटे तो उस समय। तो मैं यहाँ पर आई तो सब कुछ एक्साइटिंग था, बहुत देखने में कुछ नया नया लगता था, और भगवान से मिलने जा रहे हैं, पहले से ये मालूम था बुद्धि में बैठा हुआ था कि भगवान से मिलने जा रहे हैं, बाबा से मिलने जा रहे हैं। और मिलने का मौका कैसे मिला, क्योंकि मन में तो वो धुन थी, तो यहाँ पर अपना माउंट चाबू में जो हमारा म्यूजियम बना हुआ है, वह म्यूजियम बना हुआ उस समय म्यूजियम नहीं था, उसके सामने अभी तो वहां पर होटल बना हुआ है, उसके सामने ये ओपन स्पेस थी, और उस ओपन स्पेस पर वहां पर हमारी पहली एग्जीबिशन का उद्घाटन का फंक्शन चल रहा था। तो उस उद्घाटन के फंक्शन में हुआ क्या, हम बहुत आगे बैठी थी तो किसी ने मुझे आके उठा दिया और जो मेरे साथी आए हुए थे ना तो हम लोग अलग अलग हो गए। अब फर्स्ट टाइम था लौकी घर से अकेले निकलना, वो बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए तो मुझे कोई मिले ही नहीं, फंक्शन पूरा हो गया तो मैंने रोना शुरू कर दिया। अब वो रोना शुरू ऐसा हुआ, रात का शाम का फंक्शन था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमारी चक्रधारी दीदी जो हैं वो पहले से ही बाबा के क्लोज थी पहले से ही, तो वो जा रही होंगी बाबा के रूम से बाहर से, तो बाबा ने उनको बुलाया और उनको कहा कि बच्ची तुम्हारा ग्रुप ठीक है, पार्टी उस समय पार्टी कहते थे, तुम्हारी पार्टी ठीक है। तो दीदी ने कहा कि हाँ पार्टी बाबा सारी ठीक है, लेकिन उसमें एक छोटी कुमारी है वो रोती रहती है। तो बाबा ने कहा कि तुम उसको मेरे पास ले आओ। तो दीदी ने कहा कैसे लाऊं, वो तो टर्न आएगा बाबा तब लेकर आएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं तुम पीछे के दरवाजे से ले आओ। तो मुझे अभी तक याद है जो पांडव भवन का जो बाबा का ये कमरा है ना, तो ये पीछे का दरवाजा था, छोटा सा दरवाजा, ये तो बहुत बड़ा बन गया है, और ईंटों का फर्श था। बाबा बहुत साधारण रहते थे, साकार बाबा। और मैं ये बात बोलती हूँ तो मेरे सामने वो चित्र खींचता है आज भी। चारपाई थी, उस पर चादर बिछी हुई थी, बाबा सामने बैठे थे और बाबा को मैंने देखा, और देखते ही जैसे कहते शब्द, आज मैं वो कहती हूँ, उस समय तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो नजर से जैसे बाबा ने निहाल कर दिया। नहीं तो हमारे जीवन को कोई इतना जल्दी बदले, क्योंकि शुरू से अलग प्रकार के विचार थे। तो इस तरह से बाबा ने जैसे नजर से निहाल कर दिया और बाबा ने कुछ शब्द उच्चारे, बस वहां से मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और तब ही हमने ये पक्का निश्चय कर लिया कि बनना है तो ऐसा ही बनना है। और वैसे ही हमें गुलजार दादी को देख के, चक्रधारी दीदी को देख के बहुत मन में ऐसा लगता था कि हमको अपना जीवन ऐसा बनाना है। तो वहां से हमारा जीवन शुरू हुआ। और साकार बाबा से जो मेरी वो मुलाकात थी, तो वो मुलाकात मुझे बाद में भी हमेशा जब भी कोई बात होती थी, क्योंकि फिर तो हमने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, वो सब पूरी करने के बाद हम आए, तो लेकिन मुझे हमेशा मन में वो बात आती थी, मुझे बार बार वो घटना याद आती थी जब मैं बाबा से मिली थी, वो स्मृति आती थी। तो उस तरह से बाबा ने हमारे जीवन में ये परिवर्तन लाया। तो मैं हमेशा इस बात के लिए कहती हूँ कि अगर मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के निमित्त बने वो थे स्वयं साकार बाबा। और मुझे अभी तक याद है मैंने बहुत बड़ी चिट्ठी अपने घर में लिखी थी और मैंने ये लिखा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई एक बहुत ही विशेष व्यक्ति है और ऐसा ही लगता है जैसे कि ये स्वयं भगवान है। ये तो बाद में समझ आई कि भगवान ने उसका तन लिया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो स्वयं भगवान है। और फिर तो बाबा के साथ फोटो खिंचाने का ये सब बातें बहुत सारी हैं, तो वो एक अनुभव रहा बाबा के साथ मिलने का। और धीरे धीरे फिर तो नेचुरल है वो जीवन चलता रहा। तो ये छोटा सा अनुभव है साकार बाबा से मिलन का, बाकी तो फिर भी मिलते रहेंगे।
बहुत बहुत हाँ दीदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। साकार कुटिया को याद करके, बाबा के कमरे को याद करके अभी भी दिल गदगद होती है। जिन्होंने भी नए नए बाबा के बच्चे आए होंगे, पांडव भवन की यात्रा तो चार धाम की जरूर की होंगी, तो जरूर अभी भी अनुभव के वो शब्द सुनते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। दीदी जी आपके साथ आपकी लौकिक दो बहनें भी आज बाबा की ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। राधा बहन जी जो गोरेगांव मुंबई में अपने सेवा केंद्र को वहां संचालित करते हैं, और सुधा बहन जो रशिया में चक्रधारी बहन जी के साथ में वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आप स्वयं मुंबई में सांता क्रूज ईस्ट में संचालिका है। तो ऐसे तीन रतन बाबा के लौकिक अलौकिक दोनों का बैलेंस रखते हुए आज दीदियों ने अपनी सेवाएं यहां पर प्रदान की है। इसलिए दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।